आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामले की पूरे देश में एक साथ जांच कराने के लिए सीबीआई को दिया निर्देश। राज्यों से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच के लिए सीबीआई को अनुमति देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक में धान क्रय केंद्रों की संख्या 5,000 तक बढ़ाने और किसानों को समय से भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना लागू, पहले चरण में बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट। और वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला चरण। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामले की पूरे देश में एक साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी राज्यों से कहा है कि वे डिजिटल अरेस्ट के मामले में जांच के लिए सीबीआई को अनुमति प्रदान करें। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या बागची की पीठ ने हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर दर्ज मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों पर आने वाले हर किसान का धान खरीदने और समय पर उनके खाते में सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया है। कल लखनऊ में एक बैठक में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार मैन पावर बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को वापस न जाना पड़े। उन्होंने धान क्रय केंद्रों की संख्या 5,000 करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को अपने गांव के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों तक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कल लखनऊ में आयोजित विकसित यूपी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जो केवल महानगरों में मिलती हैं। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका निर्णायक रहेगी। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य के कई जिलों ने इसमें उल्लेखनीय प्रगति की है। एटा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय से पूर्व 100% पूरा हो गया है, जबकि अमरोहा में SIR से संबंधित कार्य की प्रगति लगभग 83% है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर SIR के कार्यों की समीक्षा की। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि गणना प्रपत्रों के संग्रह तथा डिजिटाइजेशन के कार्यों में लगे कर्मचारियों के परिश्रम से प्रदेश में अब तक 11,95,00,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18,582 BLO ने अपना कार्य 100% पूरा कर लिया है। उधर लखनऊ में SIR और उसकी महत्ता के प्रति कल लोगों को जागरूक करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया की तिथि बढ़ाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब मतदाता आसानी से गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे और इससे इस कार्य में लगे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
SIR भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण सूची बनाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रहा है। डेट बढ़ने से जो मतदाता हैं वो आराम से अपना गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे और जो गणना कर्मी हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूरे प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 कल से लागू हो गई। योजना के प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी एवं मूलधन पर 25% अतिरिक्त छूट मिलेगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रयागराज के सोराव सब स्टेशन से इस योजना की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा सब स्टेशन और रायबरेली जिले के ऊंचाहार सब स्टेशन में मेगा कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के बीच विश्वास एवं सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगी।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को वर्षों पुराने बिजली के बकाए के भार से मुक्ति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एक बहुत ही उदार, बहुत ही ऐतिहासिक बिजली बिल राहत योजना चलाई है, जिसका 1 दिसंबर से हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग कर रही की है। बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें 100% ब्याज माफी के साथ 25% तक की मूलधन में भी माफी का प्रावधान किया गया है।
तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
इस बार के काशी तमिल संगमम 4.0 का मूल मंत्र है आइए तमिल सीखें, यानी तमिल करकलम। ये संस्करण तमिल भाषा सीखने की भावना को केंद्र में रखता है और इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि सभी भारतीय भाषाएं एक साझा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। काशी में होने वाले इस आयोजन में 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से शामिल होंगे। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक और मीडिया पेशेवर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लोग और कारीगर, महिलाएं और आध्यात्मिक विद्वान शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला चरण आज से 15 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित होगा। संगमम का दूसरा चरण 15 से 31 दिसंबर तक तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन भी उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि काशी तमिल संगमम 4 के पहले चरण में तमिलनाडु से छात्रों और शिक्षकों का 7 दल वाराणसी आएगा। वहीं 300 छात्र वाराणसी से तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु से आने वाले दल में शामिल शिक्षक वाराणसी के स्कूलों में बच्चों को तमिल भाषा सिखाएंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक कार रैली ऋषि अगस्त वाहन रैली भी होगी। एक प्रमुख पहल के रूप में यह रैली 2 दिसंबर को तेनकासी तमिलनाडु से शुरू होगी और 10 दिसंबर को वाराणसी में इसका समापन होगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 920 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। घोषित पदों में 814 पद PCS और 106 पद सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामले की पूरे देश में एक साथ जांच करने के लिए CBI को दिया निर्देश। राज्यों से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच के लिए CBI को अनुमति देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक में धान क्रय केंद्रों की संख्या 5,000 तक बढ़ाने और किसानों को समय से भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना लागू। पहले चरण में बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट। और वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।